प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 19 मई 2016 है और आज के इस afeias.com में मैं डॉ विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने उन 6 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की सितंबर अक्टूबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं पूजा डांगी, आप विदिशा मध्य प्रदेश से हैं, अंशुल पटेल दिल्ली से हैं, चक्रपाणी तिवारी आप जौनपुर से हैं, राजीव रंजन आप दिल्ली से हैं, तेली राकेश भेरूलाल बालासिनोर गुजरात से हैं और रोहित बामहोरे भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। तो पूजा, अंशुल, चक्रपाणी, राजीव, तेली राकेश और रोहित, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, छोटी छोटी दो सूचनाएं हैं। एक सूचना तो रोज जैसी ही है जो करेंट कंटेंट से रिलेटेड है, मैं फिर से बताना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा कि आप सब करेंट कंटेंट पर डेफिनेटली रोजाना जाएं, इसे बिल्कुल भी मिस न करें। करेंट कंटेंट में आपको पढ़ने को बहुत ज्यादा चीजें नहीं मिलेंगी, जानबूझकर उसको हम लोगों ने छोटा रखा है। कोशिश यही है कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट से संबंधित चीजें उसमें डाली जाएं ताकि आप उन्हें ध्यान से पढ़ें, ध्यान से 2-3-4 बार दोहराएं भी, अगर जरूरत समझते हैं तो उन्हें अलग जगह पर नोट भी कर लें और बेहतर होगा कि उनका इस्तेमाल करना भी शुरू कर दें। मित्रों, इसके पीछे बहुत ही सोचा समझा निर्णय है कि इस करेंट कंटेंट वाले हिस्से में हम लोग बहुत थोड़ी सामग्री डालेंगे क्योंकि एकेडमी का जो विश्वास है वो बहुत ज्यादा पढ़ने और पढ़ाने पर नहीं है। बहुत ही सही सेलेक्टेड चीजों पर ही यदि हम जोर देकर उन पर अपनी कमांड बना लेते हैं तो एकेडमी का विश्वास है कि सफलता हमारे नजदीक आ जाती है। तो मित्रों, करेंट कंटेंट पर आप लोग डेफिनेटली जाएं, ये मेरी आप लोगों को सलाह है। और जो दूसरी सूचना है वह यह कि आप इसी वेबसाइट पर जाकर एक मेरा प्रोग्राम सुन सकते हैं, थोड़े बहुत मामले में आप देख भी सकते हैं। अभी हम लोगों ने 3 लेक्चर्स का विचार किया है जिसका पहला लेक्चर रिलीज किया जा चुका है और ये तीनों लेक्चर इस बात से संबंधित है कि आपको आईएएस की तैयारी कैसे करनी चाहिए। नो डाउट फ्रेंड्स कि इसका जो आईडिया आया है वो आप लोगों के माध्यम से ही आया है। लगातार जो आप लोगों के मेल्स मिलते हैं उनको देखते हुए उन जरूरतों के आधार पर ही ये तीनों लेक्चर्स तैयार किए गए हैं। पहला लेक्चर इस बात पर है जो अभी ऑलरेडी आपको वेबसाइट पर अवेलेबल है वो इस बात पर है कि आपको आईएएस की तैयारी करने के लिए किन सिद्धांतों को अपनाकर चलना चाहिए। तो उसमें उसकी थ्योरीज या प्रिंसिपल्स की बात की गई है। जो नेक्स्ट जो लेक्चर कुछ ही दिनों के बाद आपको बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा वो इस बात पर होगी कि आपको इसके लिए किन किन तरह के किस किस तरह के मटेरियल की जरूरत होती है। और इसके बाद जो तीसरा लेक्चर होगा वो होगा कि अब आपको जो ये मटेरियल जो आपने इकट्ठा कर लिया है, आपको जो दिया गया है, इसका आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसके पढ़ने की दशा और दिशा क्या होगी। तो इस तरीके से ये 3 लेक्चर्स आपको कंप्लीट प्रिपरेशन के बारे में एक कॉन्सेप्चुअल बेस तो प्रोवाइड करेंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। तो मित्रों, ये दूसरी महत्वपूर्ण सूचना थी। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं लाइफ मैनेजमेंट वाले पार्ट पर। एक बार फिर से मैं माफी मांगते हुए अपने उन सभी प्रिय श्रोताओं से जो थोड़े से अलग तरह के विषयों की मुझसे उम्मीद कर रहे होंगे, करते रहे हैं, थोड़ा सा मुझे कुछ दिन मुझे और दे दें। मैं जरा सा जो आईएएस के जो स्टूडेंट हैं, जो सिविल सर्विस की सीधे सीधे तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको ध्यान में रखते हुए उनके सिविल सर्विस के आए हुए रिजल्ट को बेस बनाकर लाइफ मैनेजमेंट की कुछ बातें कर रहा हूं। तो लेकिन बहुत जल्दी ही मुझे लगता है कि ये लाइफ मैनेजमेंट में ये जो विषय हम लोग लेकर चल रहे हैं ये पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पर फिर से आप लोगों से बात करने जा रहा हूं और उस इशू के केंद्र में फिर से हमारी इस साल की टॉपर हैं। मुझे मेल भी मिले हैं, मार्क्स भी मिले हैं, मैं उसी के आधार पर अपनी बात कह रहा हूं। और उसमें मुझे सूचित किया गया है कि जो इस बार की हमारी टॉपर हैं टीना डाबी, उनके प्री में जो मार्क्स आए हैं, प्री में हम एक ही पेपर का लेकर के चलें, दूसरा पेपर तो क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसलिए उस मार्क्स की कोई उपयोगिता हम नहीं मानते। जो रियल पेपर होता है जिसके आधार पर प्री की मेरिट लिस्ट डिसाइड होती है, उसमें टीना को जो टॉपर रही है 96.66% मार्क्स मिले हैं, 96.66% मार्क्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि उस तरह से देखें तो टीना जी रिजर्व्ड ग्रुप से हैं और इसीलिए वो प्री में क्वालिफाई भी कर पाए। जनरल कैटेगरी के साथ 106 point something मार्क्स थे, जो कट ऑफ मार्क्स थे, तो उसमें ये कवर नहीं होती हैं, लेकिन रिजर्व्ड ग्रुप में से जो जिस ग्रुप से बिलोंग करते शायद 94-95% मार्क्स का वो कट ऑफ है। चलिए हम उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन यह है कि वो उसके बॉर्डर लाइन पर। इसके बारे में कुछ स्टूडेंट्स ने जानना चाहा है, नो डाउट इच्छा होती है फिर जानने की, लेकिन मैं आपको इसकी फिर से एक रियलिटी बताता हूं दोस्तों, इसके रियलिटी को समझिए, है ना। सीधे सीधे इस बात पर मत चले जाइए कि नहीं टीना तो जो है ना बिल्कुल, क्योंकि प्री में ही इतने कम मार्क्स हैं तो डिजर्व नहीं करती कि वो टॉप कर सकती हैं, ऐसा कैसे होता है। होता है ऐसा ही ज्यादातर होता है, और क्यों होता है मैं आपको इस तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि इसके माध्यम से आप सिविल सर्विस के करेक्टर को समझ सके, सिविल सर्विस के करेक्टर को यानी कि सिविल सर्विस की तैयारी करने के करेक्टर को, परीक्षा के करेक्टर को आप समझ सके। मित्रों, ये पहली बार नहीं हुआ है, मैंने शायद अपने किसी दिन के डेली ऑडियो में आप लोगों को बताया है कि दो नंबर अगर हमारे पिछले साल के टॉपर के कम आए होते ईरा सिंगल के, तो वो प्री में से गायब हो जाती, प्री में ही रुक जाती, उनके मार्क्स बिल्कुल बॉर्डर मार्क्स उनके थे। लगभग यही स्थिति टीना डाबी की भी है। मित्रों, इसे आपको थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से समझना पड़ेगा, और मैं समझता हूं कि इसको समझना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा उपयोगी भी होगा। देखिए, जो प्री का पैटर्न है और जो मेंस का पैटर्न है, राइट, ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। मैं पैटर्न की बात कर रहा हूं, प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों के अंतर को समझिएगा। नो डाउट कि जब हम पैटर्न को अलग अलग कर देते हैं तो प्रिपरेशन में भी थोड़ा सा फर्क तो हो जाता है, लेकिन दोनों के प्रिपरेशन की एक जो बहुत मूलभूत बात है, जहां दोनों बिल्कुल एक हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है बावजूद उसके कि दोनों का पैटर्न बिल्कुल अलग है, वो ये कि दोनों ही अब इस बात की बहुत ज्यादा डिमांड करने लगे हैं कि यू शुड नो योर सब्जेक्ट वेरी वेल, आप अपने विषय को बहुत अच्छे तरीके से जानें, समझें, उस विषय पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और ये जो मैं पकड़ की बात कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको याद होने चाहिए। चलिए हम याद के बारे में एक बात करते हैं फ्रेंड्स, और वो ये कि हर कोई कहता है कि एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए, बिल्कुल सही कहते हो, गलत नहीं कहते हैं। अगर मान लीजिए कि एक सीबीएसई का स्टूडेंट है जिसने सीबीएसई में टॉप किया है, राइट, और उसके जो मार्क्स भी हैं, आप देखते हैं टॉपर के मार्क्स आजकल तो 98-99% होते हैं, यानी कि पूरी किताब उसने रट डाली है और उसने अभी 12th टॉप किया है, क्या आप उसको सिविल सर्विस प्री का पेपर दे देंगे और कहेंगे कि इसको सॉल्व करो, तो आपको लगता है कि वो क्वालिफाई कर जाएगा? उसको पूरी किताब याद है, पूरी किताब याद है, और यहां तक तो मैं कहता हूं चलिए, उसको किताब अगर याद नहीं भी है तो आप पेपर दे दीजिए, 2 घंटे का समय दे दीजिए और कहिए कि ये किताब भी ले लो, जहां तुमको कंसल्ट करने की जरूरत पड़े वहां कंसल्ट भी कर लो और फिर इस पेपर को सॉल्व करो। आपको लगता है वो क्वालिफाई कर जाएगा? वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, जबकि उसको सब कुछ याद है, यानी कि उसको याद तो है लेकिन वो मैच्योरिटी नहीं है, जो सब्जेक्ट है उस पर उतनी पकड़ नहीं है, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई है, और अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी है तो आप प्री के क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर सकते, मेंस को तो सॉल्व करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब है कि चाहे वो प्री हो या मेंस हो, दोनों सब्जेक्ट की बहुत बेसिक समझ और उन पर बहुत अच्छे कमांड की मांग करते हैं, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां प्री और मेंस दोनों एक है, राइट। अब दोनों अलग कैसे कैसे हैं, उनके पैटर्न को समझिए फ्रेंड्स। जो प्री का जो पैटर्न है वो आपको मालूम है, पैटर्न की अगर हम सीधे सीधे बात करें तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, जबकि मेंस का जो पैटर्न है वो एनालिटिकल है, राइट। तो प्री के ऑब्जेक्टिव टाइप को सॉल्व करने के लिए आपको दो तरह के कैपेसिटी की जरूरत पड़ती है। नंबर 1, कि आपको कंटेंट मालूम हो, आप देखेंगे कि लगभग लगभग मैंने देखा है कि 15-20% क्वेश्चंस तो प्री के ऐसे होते हैं जो कंटेंट बेस्ड होते हैं। अगर आपको कंटेंट सीधे सीधे मालूम है तो आप आंसर दे सकते हैं, और रिमेनिंग जो होते हैं, जो बहुत बड़ा पार्ट होता है, वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, एनालिटिकल बेस्ड नहीं। प्लीज इसको फिर समझने की कोशिश कीजिए। ये छोटे छोटे शब्द हैं मित्रों, लेकिन बहुत मायने रखते हैं। एनालिटिकल बेस्ड नहीं होते प्री के क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। और जबकि मेंस पूरी तरह से एनालिटिकल होता है। अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आप एनालिसिस के लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते। तो प्री से आप मेंस तक आते हैं। ये दोनों के पैटर्न में अंतर है, और इस अंतर को समझने के बाद अब आप इसी बात को इस बार के टॉपर पर अप्लाई कीजिए, तब आप टॉपर की कैपेसिटी को समझ पाएंगे। अदरवाइज मित्रों, उनकी इस बड़ी उपलब्धि को किनारे कर देना, नकार देना या छोटा मान लेना बहुत आसान है, लेकिन ये छोटा नहीं है, ये आसान नहीं है, ये बड़ी बात है। अब आप देखिए कि जो प्री की तैयारी है, चूंकि उसमें अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, उसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग की और थोड़ी सी फिर पावर ऑफ असेसमेंट की जरूरत होती है, तो वो उनके पास कम है, कोई बात नहीं। लेकिन जो पावर ऑफ एनालिसिस है वो उनके पास बहुत अच्छी है, और उस पावर ऑफ एनालिसिस के दम पर वो इतने अच्छे मार्क्स लेकर आई हैं। अगर जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर, मैं सेकेंड कहता हूं, वैसे इन टोटल वो थर्ड कहलाता है, जो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है, अगर उनके पेपर क्वेश्चंस, उनके मार्क्स को हटा दिए जाएं, तो बाकी में उनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, यानी कि उनके पास एनालिटिकल पावर है। जिसके पास एनालिटिकल पावर है, जरूरी नहीं होता दोस्तों कि उसके पास उस तरह की अंडरस्टैंडिंग और उस तरह की असेसमेंट पावर भी हो, कंटेंट को भी वो इंफॉर्मेशन के पैटर्न पर, इंफॉर्मेशन के फॉर्म में याद रख सके, जो प्री के लिए जरूरी होती है। दोस्तों, मैं टीना जी की या ईरा सिंघल, जो इससे पहले की टॉपर रही हैं, उनके इस संकट को समझ सकता हूं, क्योंकि मैं इस संकट का खुद भुक्तभोगी रहा हूं। यस, मुझे मेंस में कभी भी डर नहीं लगता था, मैं ईमानदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, और मैं अपने को कोई हीरोइक रूप में पेश करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूं दोस्तों। मैं 100% ईमानदारी के साथ और पूरी जिम्मेदारी से आपके साथ अपने बारे में ये भाव शेयर कर रहा हूं कि मुझे मेंस में कभी डर ही नहीं लगता था। मेंस के मैं अनसॉल्व पेपर देखता था, अपनी तैयारी से उसका जजमेंट करता था, तो मुझे लगता था कि मैं आंसर लिख लूंगा, ठीक है, मैं शायद उतने अच्छे आंसर नहीं लिख पाऊं जितने आंसर और दूसरे लोग लिख लेंगे। मैं ये नहीं कहता कि मैं परफेक्ट आंसर लिख लूंगा, मुझसे बेहतर कोई लिख ही नहीं सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता था कि क्या पूछ लिया गया, मैं कैसे लिखूंगा, ये समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, ऐसा नहीं लगता था। मेरा जो सबसे बड़ा संकट था, जिससे मैं डरता था, घबराता था, वो था प्री। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता था, हे भगवान, प्री क्वालिफाई करा देना, इसमें तू, इसे तू क्वालिफाई करा दे, मेंस तो मैं क्वालिफाई कर लूंगा, ये मुझे लगता था। तो प्री का ये संकट होता है, और हम लोगों के समय में थोड़ा अंतर ये भी था कि हम लोगों के समय में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन उतने नहीं आते थे जितने आज आते हैं, आज बहुत आने लगे हैं। हम लोगों के समय में कंटेंट बेस्ड ज्यादा होते, जिसमें आपको थोड़ा सा यादवाद करने का भी रहता है कि आप चीजों को रटें, सन कौन सा है, नदी का किनारा कौन सा है, इस तरह की चीजें होती थी, जो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होता है। आज भी सच पूछे तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो यहां आपको इस तथ्य को समझना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, जो अभी तीन महीने का लगभग लगभग समझ लीजिए, थोड़े ही दिन कम है वक्त आपके लिए प्री के बचे हैं, तो प्री के प्रिपरेशन के लिए आप, अब चूंकि आप उसी प्रिपरेशन में ज्यादा लगेंगे, तो आपको एक अलग तकनीक अपनानी पड़ेगी। आप मेंस की तकनीकी को प्री पर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक इसी तरह से आप प्री के तकनीकी को मेंस पर अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, ये बात जरूर है कि आप मेंस की तकनीकी को इंटरव्यू में जरूर अप्लाई कर सकते हैं, ये दोनों लगभग लगभग एक हो जाते हैं। तो मित्रों, आपको खासकर इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि प्री क्या एग्जाम होती है और मेंस क्या एग्जाम होता है। रियल जो एग्जाम है वो मेंस है, जहां आपका सही मूल्यांकन होता है। प्री तो केवल एक एंट्रेंस टेस्ट की तरह ही है, जिसमें हो सकता है कि एक स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा रटने में विश्वास करता है, बहुत ज्यादा मेहनत में विश्वास करता है, जिसकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी है, वो इसमें टॉप कर जाए प्री में। लेकिन हो सकता है कि मेंस को क्वालिफाई करने की सूची में उसका नाम ही ना आए, क्योंकि वो चीजें तो उसके पास ढेर सारी हैं, इसका फायदा तो उसे प्री में मिल गया, लेकिन चूंकि वो कुक नहीं कर पा रहा है उसकी वजह से वो मेंस में रह गया। तो मित्रों ये अंतर होता है, इसलिए टीना जी के जो मार्क्स प्री में कम आए हैं मैं कहीं भी उसे उनकी किसी कमजोरी का प्रमाण नहीं मानता हूं, मैं प्रतीक नहीं मानता हूं, ये अपनी अपनी तैयारी के अपने अपने स्तर होते हैं। वो क्षेत्र उनका कमजोर था लेकिन इसको उस कमजोर क्षेत्र को भी वो यहां तक ले आई थी जहां तक उनका काम चल सकता था, उन्होंने बहुत अच्छी टेक्निक अपनाई। अगर मान लीजिए 50 रन बना करके और मैं सक्सेस हो सकता हूं तो 100 रन बनाने के फेर में मैं क्यों पढ़ूं, और मुझे सच पूछे तो कप मिल गया। दैट्स ये पॉलिसी उनकी रही होगी, ज्यादा जोर उनका मेंस पर रहा होगा, प्री को उन्होंने यहीं तक की कोशिश की होगी कि मुझे किसी तरह से सफलता मिल जाए, और अंततः उन्होंने अपने सफलता के झंडे गाड़ दिए और सिविल सर्विस के सफलता के इतिहास में अपना एक पन्ना तो सुरक्षित कर ही लिया और यही काफी है। तो मित्रों टीना जी के इसके माध्यम से मैंने आपको केवल ये छोटी सी बात बताने की कोशिश की है लाइफ मैनेजमेंट के अंतर्गत कि किस तरीके से सफलताएं मिलती हैं, है ना। सफलताओं का मतलब ये नहीं कि केवल पढ़ते चले जाइए और हर चीज में आप बराबर के स्तर की सफलता प्राप्त करेंगे, हर स्टेज में ही आप टॉप करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। टोटल में चीजें देखी जाती हैं कि अंतिम रिजल्ट क्या रहा है और वही मायने रखता है। तो मित्रों मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप लोग बहुत सी इन्फॉर्मेशन रिजल्ट से संबंधित मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं और मुझसे फिर मदद मिलती उन सब से मुझे मदद मिलती है और मैं अपनी बात को शायद ज्यादा विश्वसनीय तरीके से आपके सामने रख पाता हूं। तो आप लोगों के पास जो भी इस तरह की सूचनाएं हो प्लीज आप भेजें, मैं उस तरह की सूचनाओं के लिए आप लोगों को आमंत्रित करता हूं। फ्रेंड्स अब मैं आता हूं AIR न्यूज पर। दोस्तों AIR न्यूज में पता नहीं कुछ अभी ऐसा हो रहा है कि कुछ खास अगर बड़ी बोलचाल की भाषा में बात करें तो कुछ ऐसा मसाला मिल नहीं रहा है कि मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा डिस्कस कर सकूं, लेकिन मैं समझता हूं कि एक अच्छी बात भी है क्योंकि अगर वहां मसाला नहीं मिल रहा है तो हमारे पास मसालों की कमी नहीं है, हम दूसरे इश्यूज पर बात करके और अपनी सिविल सर्विस की तैयारी को और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि जब मसाला मिलता है तो फिर बट नेचुरल की हमारी जो बातचीत होती है वो वहीं तक सिमट करके रह जाती है, जो आप लगभग रोज ही उस पैटर्न पर सुनते हैं। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिसको आधार बनाकर हम लोग बातें कर सकते हैं और बहुत उपयोगी बातें कर सकते हैं। तो मित्रों चलिए आज हम ऐसे ही एक इश्यू को बनाते हैं और उसको आधार बनाकर सिविल सर्विस के प्रिपरेशन की बात करते हैं, और वो है दोस्तों मौसम के ऊपर। चलिए मौसम के बहाने हम ज्योग्राफी की बात करते हैं और बड़े इंटरेस्टिंग अंदाज में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों जो ज्योग्राफी है आपके सिविल सर्विस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, वो जो चार पिलर्स मैं जो इंपॉर्टेंट कहता हूं उसमें ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल है। और ज्योग्राफी को तो मैं दूसरे सारे विषयों का एक तरह से विषयों की जननी कहता हूं, साइंसेज ऑफ साइंस कहता हूं, साइंस ऑफ साइंसेज कहता हूं। खैर तो दोस्तों आपने AIR न्यूज में कुछ चीजें सुनी है, मैं न्यूज नहीं दोहरा रहा हूं, मैं आपको एक इंप्रेशन दे रहा हूं, एक जनरल इंप्रेशन, और फिर उस इंप्रेशन को आप कैसे समझेंगे, उस पर कैसे पकड़ बनाएंगे, कैसे उसको याद रख पाएंगे और कैसे उसका इस्तेमाल एनालिसिस के रूप में कर सकेंगे, मैं आज आपसे इस मौसम की खबर के माध्यम से इसी बात पर चर्चा करूंगा। और मैं समझता हूं मित्रों, मुझे ये कहने के लिए माफ कीजिएगा कि यह चर्चा बहुत वैल्यूएबल चर्चा है, आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा उपयोगी है, प्री के पॉइंट से भी और मेंस के पॉइंट से भी। जो मैंने अभी टीना जी के सक्सेस को लेकर के बात की है, सच पूछे तो आप उनके इस सक्सेस को या मेरी उन बातों को अब जो मैं बताने जा रहा हूं इस पर सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हैं, उसका प्रैक्टिकल फॉर्म देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे ही कुछ सैद्धांतिक तौर पर बात करके अपना पल्ला खींच लिया, अलग हो गया, अब आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, अब आप उसको भुगतिए, कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है मित्रों। मैं जो बात कहता हूं सच पूछिए तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखूं, हो सकता है कि उसमें कहीं मेरी वो जिम्मेदारी बहुत लो लेवल की हो जाए, कहीं मिडिल लेवल की हो जाए, कहीं कहीं हाई लेवल की भी हो जाए, लेकिन उसमें एक जिम्मेदारी तो मैं महसूस करता हूं मित्रों, क्योंकि आप सब एक बहुत जिम्मेदारी के दौर से गुजर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उस फाउंडेशन प्रोवाइड करने में अगर मैं एक बूंद पानी भी डाल रहा हूं तो वो मेरा जो एक बूंद पानी है वो बहुत पवित्र होना चाहिए और बहुत अच्छे भाव वाला होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, ताकि वह आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। तो मित्रों, मैं न्यूज देखे, जो मौसम की जो बात थी वो अलग अलग किस रूप में है। आपने देखा बंगाल की खाड़ी शब्द आया है, फिर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र आया, ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में चेतावनी आई कि तूफान की चेतावनी, ये आया, फिर अंडमान निकोबार में वर्षा की बात आई, फिर श्रीलंका में भी भारी वर्षा की बात आई, फिर चेन्नई में भी रिकॉर्ड वर्षा हुई, ये सारी चीजें आपने सुनी, याद कीजिए, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, आपने सुनी। अब जो ये चीजें आप अलग अलग रूप में सुन रहे हैं, बट नेचुरल है कि मैं समझ सकता हूं कि आपके दिमाग में ये अब अलग अलग फॉर्मेट में है, एक अलग अलग टुकड़ों के रूप में है। बंगाल की खाड़ी अलग है, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र अलग है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जो एक वाक्य में कहा गया, इन दोनों जगह पर तूफान की चेतावनी दी गई है, वो एक है, अंडमान निकोबार की वर्षा एक है, श्रीलंका की तेज बारिश एक है, चेन्नई में जो वर्षा हुई है एक है। तो ये अलग अलग टुकड़ों में ये सात छह सात खबरें आपको दिखाई पड़ रही हैं, राइट। मेरा यहां आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहना है कि ये जो छह सात खबरें हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही खबर के छह सात रूप हैं, टुकड़े हैं, रूप तो नहीं कहना चाहिए, एक ही खबर के ये छह सात टुकड़े हैं दोस्तों, ये छह सात टुकड़े, और या कह लीजिए कि इस खबर को और भी अगर डिटेल में बता दिया जाता तो सच पूछिए तो एक ही खबर के वो टुकड़े होते, फिर चाहे ये छह सात की जगह साठ सत्तर ही क्यों ना होते। इसको इस रूप में समझिए कि जब आप एक चैप्टर पढ़ते हैं, एक अध्याय पढ़ते हैं अपने किताब का, तो उसका एक ही शीर्षक होता है, शीर्षक एक होता है, टाइटल एक होता है, और फिर उसके पन्ने कितने होते हैं, 10 पेज, 15 पेज, 20 पेज, 30 पेज, कितने भी पेज का वो लेसन हो सकता है, वो चैप्टर हो सकता है, और याद रखिए कि उसका जो शीर्षक है वो एक ही है। तो क्या हम उसी बात को इंटरेस्टिंग तरीके से इस न्यूज पर अप्लाई नहीं कर सकते कि इसका शीर्षक तो एक ही हो और उसके एक्सप्लेनेशन में फिर ये चीजें आई, या कह लीजिए कि घटना एक घटी और उसके परिणाम ये छह सात आठ होते चले गए। तो आपको नहीं लगता कि अगर हम उस एक घटना को समझ लें जो घटी है तो हम ये परिणामों को अपने आप समझ लेंगे कि अगर ये घटना घटी है तो उस घटना घटने पर तो ये परिणाम तो होने ही थे। और अगर आप इसको मान लेते हैं, इस पर विश्वास कर लेते हैं कि हां अगर एक घटना ये घटी है तो उसके ये परिणाम होंगे, तो आपको नहीं लगता कि फिर आपकी पूरी तरह से कमांड, पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग उस सब्जेक्ट के ऊपर हो गई, आपने उस सब्जेक्ट को पूरी तरह से पकड़ लिया, आपके बिल्कुल जकड़ में वो विषय आ गया। और जिस दिन आपके जकड़ में वो विषय आ गया, पकड़ में कह लीजिए, जकड़ शब्द का क्यों इस्तेमाल करें, पकड़ में अगर वो विषय आ गया तो फिर आप उस विषय को इतना अब पचा चुके हैं कि बड़े आराम से आप उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। आपको पता नहीं मेरी इस बात पर कितना यकीन हो रहा है, लेकिन चलिए अब मैं थोड़ा सा यकीन दिलाने के उद्देश्य से आपसे कुछ और बातें करता हूं। मित्रों, मैं आपको एक छोटा सा सिद्धांत देता हूं, दो चीजें मैं आपको बताऊंगा और प्लीज इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। मित्रों, सफलता और असफलता में केवल इतना ही फर्क होता है कि जब आप प्रैक्टिकल करने लगते हैं तो सफलता आपके नजदीक आने लगती है, और जब आप केवल सुनी बात सुन लिया, रट लिया करने लगते हैं तो सफलता आपको छोड़ करके किसी दूसरे के पास जाने के लिए उत्सुक हो जाती है, केवल यही फर्क है। तो आप प्लीज इसको करके देखिएगा, और करके देखने के बाद अगर सच में आपको इसको अच्छे परिणाम मिले तो मुझे एक लाइन का मेल भी भेज दीजिएगा, तो मुझे लगे कि हां नहीं, मेरे स्टूडेंट मेरे कहे हुए को कर भी रहे हैं। तो आप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मैं भी कुछ ठीक ठाक काम इसके माध्यम से कर रहा हूं, मुझे थोड़ा सा ये भरोसा हो जाएगा। एक छोटा सा सिद्धांत है ज्योग्राफी का, जो मैं समझता हूं कि मेरे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बैच के स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, जो सब्जेक्ट की बेसिक्स हम लोग यहां क्लास में बताते हैं उसी पर बेस्ड है। बहुत सिंपल सी चीज है कि जब सूरज कहीं भी ज्यादा तेजी चमकेगा, या कह लीजिए जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो वहां की हवा ठंड तपेगी, तपने के बाद वो हवा ऊपर उठेगी और वो जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, जो तपने वाला क्षेत्र है, वो कम दबाव का क्षेत्र बन जाएगा। राइट, वो कम दबाव का क्षेत्र बन जाएगा। पूरे के पूरे आप प्रकृति को ले लीजिए। तो अब बट नेचुरल है ये सिद्धांत छोटा सा है और ये आपके समझ में भी आ जाएगा। अब यहां तो मैं नहीं समझा सकता क्योंकि इसके लिए फिर थोड़े से ब्लैक बोर्ड वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो उसमें ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आती है। तो एक ज्योग्राफी की एक सामान्य सा सिद्धांत है कि जो हवाएं हैं वो अधिक दबाव से कम दबाव की तरफ बहती हैं और जो नम हवा होती है वो अधिक दबाव वाली होती है, जो हवा जिस हवा में नमी ज्यादा होती है। तो जहां गर्मी ज्यादा पड़ी है वो कम दबाव का क्षेत्र बन गया है, जहां नमी वाली हवा है वो अधिक दबाव का क्षेत्र है। तो हवा इस अधिक दबाव से कम दबाव की तरफ आ रही है, यानी कि जो नम हवा है वो गर्म क्षेत्र की तरफ आ रही है। और स्वाभाविक है कि जब नर्म हवा गर्म क्षेत्र की तरफ आएगी तो यहां आएगी, फिर दूसरे कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं कि वो जो नमी है हवा अपनी नमी को छोड़ने लगेगी और उसी को हम वर्षा कहते हैं। जहां नमी अपनी जो हवाएं हैं अपनी नमी को छोड़ने लगे, हवा थोड़ी बरसती है, हवा में जो नमी है वो बरसती है। नमी का मतलब पानी, मॉइस्चर। मैं एक सामान्य भाषा में बात कर रहा हूं, है ना, मुझे इस बात के लिए माफ कीजिएगा, मैं ज्योग्राफी की भाषा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक बहुत ही सामान्य भाषा में बात कर रहा हूं जिसे मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग कहता हूं, और यही जनरल स्टडीज भी है। मैं स्पेशल स्टडीज ऑप्शनल नहीं पढ़ा रहा हूं आपको ज्योग्राफी का, मैं जनरल स्टडीज पढ़ा रहा हूं। और इससे फिर आपको कल के इस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाएगा जिस पर मैंने कल चर्चा की थी कि क्या कारण है कि टीना जो ऑप्शनल पेपर के रूप में पॉलिटिकल साइंस लेती हैं और बहुत नंबर अच्छा स्कोर भी करती हैं, जो जिसमें उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जिसमें उन्होंने ग्रेजुएशन किया और सीबीएसई में 100 मार्क्स लेकर के आई, वही जब जनरल स्टडीज के पेपर्स में पॉलिटिकल साइंस देती हैं तो उसमें उनके सबसे कम नंबर आते हैं, बहुत कम नंबर आते हैं, मतलब 250 में 84 या 86 कुछ ऐसे नंबर है। तो आपको इसमें इस बात का भी उत्तर मिल जाएगा। तो मित्रों, पहला सिद्धांत मैंने ये बताया आपको, राइट। अब आप बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में कम दबाव का, दक्षिण पश्चिम में कम दबाव का क्षेत्र बना, ये इसको अप्लाई कीजिए, राइट। अब आप दूसरा काम ये कीजिए कि अब प्लीज आप अपना मैप पलटिए, मैप उठाइए, एटलस या मैप जो भी आपके हो, और फिर उन जगहों को स्पॉट करने की कोशिश कीजिए कि न्यूज में आपने सुना बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में यह घटना हुई है, तो बंगाल की खाड़ी को देखिए, राइट। फिर उसका दक्षिण पश्चिम क्षेत्र आइडेंटिफाई कीजिए कि इसका दक्षिण पश्चिम क्षेत्र कौन सा है, भारत से रिलेटेड खबर है ना, तो भारत का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र कौन सा है। तो जब आप दक्षिण क्षेत्र में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि तमिलनाडु और अंडमान निकोबार, ये भारत का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है। और जब आप दक्षिण में जाएंगे तो आपको श्रीलंका मिल जाएगा, तो ये दक्षिण क्षेत्र है। फिर पश्चिम क्षेत्र को आइडेंटिफाई कीजिए कि दक्षिण पश्चिम में कौन सा है। फिर जब आप दक्षिण से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठेंगे तब फिर आपको इधर कर्नाटक और इधर का हिस्सा मिलेगा। अब जब आप लेकिन जब बंगाल की खाड़ी पर जाएंगे तो बंगाल की खाड़ी के ही हिस्से में दक्षिण पूर्वी भाग में आपको आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का हिस्सा मिलने लगेगा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का हिस्सा, और पश्चिम क्षेत्र में आपको केरल मिलेगा, राइट। इन सबको देखने के बाद फिर जो आप जो वर्षा हो रही है उसको अब अप्लाई कीजिए कि यहां जब अगर कम दबाव का क्षेत्र है तो अब इधर ठंडी हवाएं चल रही हैं, नमी से युक्त हवाएं चल रही हैं, तो कहां कहां बारिश करेंगी। श्रीलंका में बरस गई, श्रीलंका में बारिश हो गई, आपको नक्शे पर देखना है, नक्शे पर ये वर्षा को देखिए। फिर चेन्नई कहां पर है, तमिलनाडु में, वो चेन्नई में बारिश हो गई। फिर तूफान की चेतावनी दी गई क्योंकि हवा पहुंच गई है, हवा की स्पीड थोड़ी सी तेज हो जाती है, उसी को हम तूफान कहते हैं। तो फिर तमिलनाडु में तो बारिश हो गई है, मतलब चेन्नई में बारिश हो गई है। फिर जब आप उसके ऊपर जाएंगे तो आपको नक्शे में आंध्र प्रदेश दिखाई दे जाएगा और फिर उसके ऊपर उड़ीसा दिखाई दे जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा जब यहां तूफान उठेगा तो यहां से उठेगा और फिर इन तटीय क्षेत्रों में ट्रैवल करेगा, तटीय क्षेत्रों में ट्रैवल करता जाएगा। तो तूफान अगर आंध्र प्रदेश की चेतावनी है तो चूंकि उड़ीसा उससे सटा हुआ है तो कहीं ना कहीं उड़ीसा भी इस चक्कर में आएगा, क्योंकि बीच में अवरोध तो कोई होता नहीं है, समुद्र के बीच में क्या अवरोध है, चलता चला जाएगा वो अवरोध, तो हवा और टेम्परेचर और प्रेशर्स अपने हिसाब से तय करेंगे, अदरवाइज तो कोई ज्योग्राफिकल ऑब्स्टेकल तो है नहीं। तो अगर आंध्र प्रदेश में ये संकट आ सकता है तो उड़ीसा में भी ये संकट आ सकता है। फिर शायद आप थोड़ा सा और अगर इस पर सोचने बैठेंगे तो आपको लगेगा यार हाँ जब एक सुनामी आया था तो सुनामी ने तमिलनाडु में चेन्नई में बहुत बवाल मचाया था, और इसके बाद फिर वो इधर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक आगे बढ़ गया था। सबसे ज्यादा उसने जो तबाही मचाई थी वो इधर चेन्नई के तट पर मचाई थी। तो आपको फिर तुरंत समझ में आ जाएगा। और मजेदार बात है फ्रेंड्स कि केवल यही घटना नहीं समझ में आएगी, आगे चलकर आप जो कुछ भी इससे रिलेटेड पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए अभी तो मानसून आने वाला है और इस तरह की रोज चीजें आप सुनेंगे कि अब बंगाल की खाड़ी पर, तो फिर पता लग जाएगा कि आप सुनेंगे कि हिंद महासागर पर हो गया, कभी आप दक्षिण पश्चिमी तट सुनेंगे, कभी पूर्वी तट सुनेंगे, कभी दक्षिणी पूर्वी तट सुनेंगे, कभी उत्तर भारत सुनेंगे, कभी मध्य भारत सुनेंगे, फिर ये हवा यहां से चल करके यहां पहुंचेगी। अभी आप पढ़ रहे हैं, अभी कल ही आपने न्यूज में, परसों आपने न्यूज में सुना था कि मानसून आने में अब एक सप्ताह की देरी होगी, पहले वो 1 जून में एक्सपेक्टेड था केरल में, तो अब वो 7 जून तक आएगा। अब फिर जब आप नक्शे में देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये जो केरल में जो मानसून आता है ये कौन सा वाला मानसून है, बंगाल की खाड़ी वाला मानसून है या हिंद महासागर वाला मानसून है, एकदम आपको पता लग जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप इस बेसिक्स को थोड़ा सा समझ लेंगे तो फिर आप देखेंगे कि अभी मानसून आने तक जो भी समाचार में आप सुनेंगे एकदम आपका दिमाग उनको रिसीव कर लेगा, एकदम उनकी एनालिसिस करने लगेगा, उनको एकदम समझने लगेगा, और यहां तक कि कुछ सीमा तक आप खुद भी कुछ चीजें प्रेडिक्ट करने लगेंगे। मित्रों आप करके तो देखिए, मेरी एक बात मानिए, इतनी बात मान लीजिए, इसको करके देखिए, आज थोड़ा सा वक्त दीजिए और अगर आपको मजा आ जाए, स्वाद आ जाए, मैं कहूंगा मजा तो छोटी सी चीज है, तो फिर आगे कीजिएगा, नहीं आया तो छोड़ दीजिएगा, कोई कंपलसरी तो है नहीं। तो मित्रों आज न्यूज को आधार बनाकर मैंने यही बात आपसे शेयर की है। दो छोटी छोटी खबरें और थी, एक तो ये मैं बताना चाहूंगा कि महिला राष्ट्रीय नीति पर आज कोई परिचर्चा आने वाली है, रेडियो पर ही उसे आप सुन लीजिएगा, मैंने आपको कल बताया था कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए वहां की जो सरकार है उसने उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया है, अखबारों में वो ड्राफ्ट है भी, वो देख लीजिएगा। अब इस पर डिबेट होगी कि दर्जा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। मैं अपने फर्स्ट सेकेंड बैच के स्टूडेंट्स को याद दिलाना चाहूंगा, साथ थर्ड बैच के स्टूडेंट्स भी उसमें कवर हो गए थे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने संबंधी मैंने एक स्पेशल ऑडियो उनको प्रोवाइड किया था। अब एक अच्छा मौका है, जब वो स्पेशल ऑडियो को सुने तब फिर इससे रिलेटेड जितनी भी घटनाएं या डिबेट्स उनको सुनने को मिलेंगी उसको वो एंजॉय कर सकेंगे और बहुत अच्छे तरीके से उसे समझ भी सकेंगे। मित्रों अब मैं आता हूं आज के न्यूज़पेपर्स पे। आज मैं आपको एक बहुत खूबसूरत न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, तो दैनिक भास्कर में छपा है दोस्तों। मैंने आपको एक एक्ट के बारे में बताया था जो भारत खासकर भूभाग के जो को लेकर के जो एक एक्ट लेकर के आई है जिसे हम जियोसेप्टिकल इन्फॉर्मेशन एक्ट के नाम से जानते हैं, भू स्थानिक मानचित्र अधिनियम कुछ इस तरह का उसका हिंदी नाम है, उसकी मैंने कल थोड़ी सी आपसे चर्चा की थी। उससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा आर्टिकल दैनिक भास्कर में आप छपा है, मैं ये दोस्तों आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इसे आप लोग जरूर पढ़िएगा, इससे आपको इस एक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी और ये क्यों लाया गया है इसे भी आप समझ सकेंगे, तो एक कॉमन सेंस आपका उसमें प्रिवेल कर जाएगा। और देखते हैं आगे इस पर और भी पढ़ने को और जानने को हमें मिलेगा तो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। दोस्तों न्यूज़पेपर्स के बारे में इतने, कुछ और भी क्लिपिंग्स हैं वो आप लोग देख लेंगे। अब मैं ईमेल पर आता हूं, तो सबसे पहले दोस्तों मैं रमेश चंद मीना को जो जयपुर से हैं, आप सबकी तरफ से, एकेडमी की तरफ से, मैडम की तरफ से और अपनी ओर से इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि रमेश चंद मीना इस बार सिविल सर्विस के इंटरव्यू तक पहुंचे थे, यानी आईएएस के इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाया। रमेश इसके लिए मैं बधाई इसलिए दे रहा हूं क्योंकि दो स्तर की सफलता आपको मिली है और अल्टीमेटली आप थर्ड लेवल पर तक पहुंचे, ये कम बड़ी बात नहीं है, मैं इसलिए बधाई दे रहा हूं। भले ही पूरी सफलता नहीं मिली लेकिन सफलता की संभावनाओं के द्वार आपने उन्मुक्त कर दिए हैं और वो संभावनाएं सच्चाई में तब्दील होंगी, इसका विश्वास आपने अपने अंदर ज्यादा पैदा कर लिया है। एक सूचना और भी है कि रमेश चंद मीना एकेडमी के स्टूडेंट रहे हैं, यानी कि उन्होंने क्लास ज्वाइन की थी, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर तो लिखा है लेकिन ये नहीं लिखा है कि वो किस बैच के स्टूडेंट रहे हैं, इसलिए मुझे बताने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं रमेश, मैं फिर से अपने सभी श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की ओर से, मैडम की ओर से और अपनी ओर से आपको भविष्य की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। मित्रों बहुत से मेल मिले हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और उनके प्रति बहुत बहुत आभार। और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, दीपक कुमार प्रजापति महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, आलोक सिंह लालगंज उत्तर प्रदेश से, मिथिलेश कुमार, मजहर अहमद खान झांसी उत्तर प्रदेश से, संगीता, रजनीश सिंह शिवदास कुच्छी से, प्रदीप कुमार कैथल हरियाणा से, सतीश चंद्र बघेल मुंबई से, रोहित गुप्ता रक्सौल बिहार से, नम्रता सिंह जमशेदपुर बिहार से, ललित कुमार चंडीगढ़ से, उदयपाल सिंह सीधी मध्य प्रदेश से, खुसरो अल अहसन मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल से, पुष्पेंद्र कुमार जमालपुर बिहार से, कुमार सुरेश मानव और संदीप कुमार लखनऊ से, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और मित्रों इसी के साथ ही अब मैं विदा होना चाहूंगा इस वायदे के साथ कि कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।